स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन के जीवन में आनंदित हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन अपने समय को निकाल करके परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए बैठते हैं। मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूं, जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम सब बाइबल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो दूसरे इतिहास की पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि सुलेमान का बेटा रहुबियाम, जिसके कारण से राज्य दो भागों में बट गया, इतना ही नहीं उसने गृह युद्ध की तैयारी भी की, उत्तरी राज और दक्षिण राज्य के बीच युद्ध करने की, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और युद्ध करने से उसे रोक दिया। परंतु हम देखते हैं कि मिस्र के राजा शीशक ने आक्रमण किया और बहुत लूट का सामान अपने साथ ले गया। मेरे मित्रों, आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 से 11 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय 9 से 11 पद लिखा है, तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा की भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो फरियां सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया। तब राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटा कर रख देते थे। मेरे मित्रों, ये वे महान सोने की ढाल थी जिन्हें दाऊद लाया था और सुलेमान ने मंदिर में रखी थी। उनके चले जाने के बाद रहुबियाम ने उनके स्थान पर घटिया पीतल की ढाल लगवा दी। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था। मेरे मित्रों, रहुबियाम के लिए यह एक दीनता लाने वाला अनुभव था। वह सुलेमान के वैभव और महिमा में बड़ा हुआ था। मित्रों, वह धन संपदा और विलासिता से हटकर कुछ नहीं जानता था। वह सोचता था कि सब कुछ सदैव वैसा ही रहेगा। अब उसे यह बोध होने लगा था कि सुलेमान के राज्य का अंत होने लगा है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब रहुबियाम दीन हुआ तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। ध्यान दीजिए, यहाँ परमेश्वर की अद्भुत करुणा का प्रदर्शन है। रहुबियाम ज्यों ही दीन हुआ त्यों ही परमेश्वर ने रहुबियाम और इसराइल की प्रजा पर से दंड हटा लिया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय उसके 13 पद में, सो राजा रहुबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहुबियाम राज्य करने लगा तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इसराइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। मेरे प्रियो, यह एक रोचक बात है कि रहुबियाम की माता का उल्लेख किया गया है। आपको स्मरण होगा कि अम्मोनियों के साथ दाऊद के अच्छे संबंध थे जबकि उन्होंने दाऊद से युद्ध किया था। उसका यह पोता रहुबियाम एक अम्मोनी स्त्री का पुत्र था। निश्चय ही उसके चरित्र निर्माण में माँ की कुछ तो अवश्य ही देन थी। राजाओं की पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर माँ का नाम अवश्य लिखता है। क्यों? क्योंकि पुत्र की उत्तरदायी वह भी है। यदि पुत्र भला है तो उसे सराहना मिलती है और यदि वह एक बुरा राजा बनता है तो उसे भी दोष उठाना पड़ता है। मेरे मित्रों, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहुबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रहुबियाम और यरोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही और रहुबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, रहुबियाम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अबियाह सिंहासन पर बैठा। यद्यपि अबियाह एक अच्छा राजा नहीं था, पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि वह अपने पुरखों का पाप के मार्ग पर चला। उसने एक बार परमेश्वर का महिमान्वन किया और यहाँ इतिहास में उसका वर्णन है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, अबियाह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 400,000 छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई और यरोबाम ने 800,000 छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबियाह समारैम नाम पहाड़ पर जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबाम, हे सब इसराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नवात का पुत्र यरोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। मेरे प्रियो, जैसा हमने देखा कि उसका कारण था एक पर्याप्त कारण, रहुबियाम की मूर्खता। जी हाँ, दूसरे इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए और जब सुलेमान का पुत्र रहुबियाम लड़का और अलहड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। वह लड़का और उलहड़ मन का ही नहीं परंतु मूर्ख और अति मूर्ख भी था। मेरे प्रियो, यह अबियाह की याचना थी कि इसराइल के 10 गोत्र लौट आए, परंतु व्यर्थ था क्योंकि यरोबाम वहां का राजा था और वह संधि नहीं करना चाहता था। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, परंतु यरोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे, और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। मेरे मित्रों, उन्होंने सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की अनुग्रहकारिता को उन्होंने देखा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबियाह और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इसराइलियों को मारा और इसराइली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया और अबियाह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहां तक कि इसराइल में से 500,000 छटे हुए पुरुष मारे गए। मेरे मित्रों, यह एक महान विजय था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं। अब अबिय्याह ने यरोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांव को ले लिया, और अबिय्याह के जीवन भर यरोबाम फिर सामर्थ्य न हुआ। निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। यह यरोबाम का दंड था क्योंकि उसने राष्ट्र का विभाजन किया था। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई, और अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। मेरे प्रियो, अबिय्याह एक महान राजा नहीं था, परंतु उसका पुत्र सिंहासन पर बैठने के बाद पहली धार्मिक जागृति को लाएगा। यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 14 से अध्याय 16 में देखेंगे। अध्याय 14 का विषय है यहूदा के आशा की धार्मिक जागृति। मेरे प्रियो, आशा के राज्य में हम पहली धार्मिक जागृति को देखेंगे। मेरे विचार में परमेश्वर ने इस पुस्तक में हमें जागृति की शिक्षा दी है। जागृति का मार्ग चट्टानी, कच्चा और चढ़ाई का है, परंतु मार्ग स्पष्ट है, उसका नक्शा सुस्पष्ट है। उनमें कुछ भूल हैं जिन्हें पार करना आवश्यक है। मेरे प्रियो, आशा उन 5 राजाओं में से एक है जिन्हें परमेश्वर ने दक्षिणी राज्य में धार्मिक सुधार के निमित्त काम में लिया था। 19 राजा हुए और सब बुरे थे, अतः वहां धार्मिक जागृति कभी नहीं आई। उनमें एक भी भला राजा नहीं था, जबकि दक्षिणी राज्य यहूदा के 20 राजाओं में से 10 को भले राजा कह सकते हैं। इन 10 में से 5 विशेष थे। इनके नाम हैं आसा, यहोशापात, योआस, हिजकिया और योशियाह। इनके राज्य काल में धर्म सुधार हुआ, जो जागृति का परिणाम था। सब राजाओं में समानता तो थी, परंतु विविधता भी थी। तो आइए हम देखें दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। मेरे प्रियो, आसा पहला राजा है जिसके राज्य में धर्म सुधार किया गया। सुलेमान उसका परदादा था और रहुब्याम उसका दादा था और अबिय्याह उसका पिता था। अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 2 से 4 पद में, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। जी हाँ, यह उसका चरित्र है और वह एक विशिष्ट जन था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा, और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा, और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी न पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। मेरे प्रियो, वह शांति प्रिय था, परंतु हम देखेंगे कि कूश ने उस पर आक्रमण किया था। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, और उनके विरुद्ध 10,00,000 पुरुष की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कूशी निकला और मारेसा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेसा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। मेरे मित्रों, आसा शांति प्रिय ही नहीं, प्रार्थनाशील मनुष्य भी था। यहाँ उसका व्यक्तिगत जीवन दिखाया गया है जो सराहनीय है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा के और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह प्रार्थना सुंदर आकर्षक शब्दों की नहीं, सीधी और सच्ची प्रार्थना है। वह मन की बात सीधी कहता है। वह एक प्रार्थनाशील महापुरुष था। यही कारण था कि राष्ट्र में जागृति आई। आज भी प्रार्थनापूर्ण व्यक्तियों की आवश्यकता है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर पशु शालाओं को जीतकर बहुत सी भीड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आसा को महान युद्ध विजय प्रदान की। मित्रों, आगे हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता अजरिया का प्रोत्साहन। जागृति के मार्ग में तीन पुल पार करना पड़ते हैं। हम पहले पुल पर हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और विन्यामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इसराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। मेरे मित्रों, हमारी आज की त्रासदी का कारण यह है कि कलीसिया में बाइबल शिक्षा प्राप्त नहीं है, अर्थात पर्याप्त नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि हमें अधिक प्रचारकों की अर्थात शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। वे अनेक हैं, असंख्य हैं, दर्जनों के हिसाब से मिल जाएंगे। बाइबल शिक्षक यदा कदा ही मिलते हैं और दूर दूर हैं, परंतु उनकी गहन आवश्यकता है। आसा के युग में भी उनकी आवश्यकता है। उनके याजक शिक्षक नहीं थे, उनके पास याजक थे, लेवी थे। वे घुटनों तक याजकों और लेवियों में डूबे हुए थे, परंतु इनमें शिक्षक नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि वे परमेश्वर की व्यवस्था और वचन से वंचित थे। मेरे मित्रों, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब तब वह उनको मिला। जी हाँ, यह इतना सरल है तथापि जटिल भी है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के साथ काम से काम रखेंगे तो वह भी आपके साथ काम से काम रखेगा। मैं मनुष्यों को कहते हुए सुनता हूँ, ओह मैं अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, प्रार्थना करने का प्रयास करता हूँ, मैं यह भी करने का प्रयास करता हूँ, वह भी करने का प्रयास करता हूँ, परंतु कहीं पहुँच नहीं पाता। मेरे मित्र, आप किससे उपहास कर रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बातें करके आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं मिल जाऊंगा। यदि आप परमेश्वर के साथ काम से काम रखेंगे तो वह भी आपके साथ काम से काम रखेगा। मेरे मित्रों, अपने मन को खोजें। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को जानने की लालसा करते हैं तो परमेश्वर को कभी भी खोजें, वह आपको मिल जाएगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है, उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था और जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हिया बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आसा ने परमेश्वर की निकटता में आना आरंभ किया। भविष्यद्वक्ता उसे प्रोत्साहित करता है और उसे समझाता है कि उस पर संकट क्यों आए और समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्यद् वक्ता का यह संदेश यहूदा के लिए वरन हमारे लिए भी है। मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के वचन के अध्ययन और उसकी प्रजा के साथ उसके व्यवहार को देखकर मैं सोचने लगा कि हमारे राष्ट्र की समस्या की जड़ तो यही नहीं। हमारे पास बुद्धिमान नेता हैं, परंतु वे मूर्खता के निर्णय कैसे ले सकते हैं? हमारे देश में कानून और व्यवस्था क्यों नहीं है? हम शांति से क्यों नहीं रह पा रहे हैं? आज ऐसी अव्यवस्था क्यों है? परमेश्वर के वचन पर आधारित मैं अपनी राय प्रकट करना चाहता हूँ। समस्याओं का मुख्य कारण है कि परमेश्वर का त्याग दिया गया है। मेरे मित्रों, इस युग में जिसमें हम सब रहते हैं, हमारे राष्ट्र को परमेश्वर की महान आवश्यकता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हिया बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम की पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया, और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम मनस्से और शिमोन में के जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देख कर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल में से उसके पास बहुत से चले आए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास सदैव एक समूह बचा रहता है जो उसकी शरण में रहेगा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 15 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, आसा के राज्य के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। मित्रों, आप देखेंगे कि वे पहला पुल पार कर रहे हैं, वे चक्कर काट कर नहीं जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान अब प्राप्त हुआ है। वे अपने संपूर्ण मन एवं प्राण से परमेश्वर की ओर फिरकर उसकी खोज कर रहे थे। यह जागृति पाने वालों की विशेषता थी कि वे परमेश्वर के वचन में लौट आए थे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ और कहने का साहस भी रखता हूँ, परमेश्वर के वचन के बिना जागृति आ ही नहीं सकती है। बाइबल के लिए चक्कर काट कर जाने का मार्ग नहीं है, इसका विकल्प कहीं भी नहीं है। जॉन वेस्ली के युग में वह महान आत्मिक अभियान जिसे उसने छेड़ा था, मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन पर निर्मित था। वेस्ली प्रतिदिन प्रातःकाल 3 भाषाओं में बाइबल पढ़ता था। व्हाइट एल मूडी और महान आत्मिक जागृति ने उसके युग में महान बाइबल संस्था अभियान को जन्म दिया। परमेश्वर के वचन के अध्ययन का एक महान अभियान था, और यह आज हमारे युग में निर्जीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से दूर होते जा रहे हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें इससे भी अधिक बहुत ज्ञान चाहिए। जागृति किसी काम या किसी आराधना विधि पर निर्भर नहीं है, इसके लिए परमेश्वर के वचन का वास्तविक ज्ञान एवं उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमारे आज के समाज में परमेश्वर संस्थाओं और प्रचारकों का उपयोग कर रहा है, परंतु मेरी चिंता का कारण यह है कि वे परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च प्रधानता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इन संस्थाओं वरन स्कूलों को परमेश्वर के वचन के परिपूर्ण अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करने में बहुत कठिनाई होती है। मेरे प्रियो, हम में सच्ची जागृति तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि वह बाइबल के परिपूर्ण ज्ञान पर आधारित ना हो। मैं आशा करता हूँ कि जागृति आएगी। मेरे विश्वास में यह मार्ग का पहला पुल है, हमें यह पहला पुल पार करना होगा। इस महान सभा में जिसका आयोजन आसा ने यरूशलेम में किया था, उसमें उन्होंने वाचा बांधी कि उसे संपूर्ण मन से खोजेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंहा बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। ध्यान दीजिए, यह एक निर्दयी वाचा, परंतु उनके मन में इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। आसा ने इस समय अनेक सुधार किए। आगे पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 15 अध्याय के 15 पद में, और यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। मेरे मित्रों, यदि आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज करेंगे तो आप उसे अवश्य ही पाएंगे। हमने देखा कि जागृति का पहला पुल परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। अब हम दूसरा पुल देखेंगे। यह पुल है धर्म शास्त्र पर आधारित पृथकीकरण अर्थात पवित्रता। यह शब्द पृथकीकरण मसीही क्षेत्र में एक सर्वाधिक दुरुपयोग का शब्द है। आशा यहाँ धर्म शास्त्र पर आधारित पृथकीकरण का अभ्यास कर रहा है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, वरन आशा राजा की माता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आशा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। मेरे प्रियो, यह वास्तव में अति रोचक बात है। उसकी माता ही मूर्ति पूजक थी। ध्यान दीजिए कि वह मूर्ति पूजकों की मित्र ही नहीं थी, स्वयं भी मूर्ति पूजक थी। यही कारण था कि आशा ने उसे प्रभाव के क्षेत्र से हटा लिया था। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 17 पद में भी देखते हैं, जहां पर हम आगे पढ़ते हैं, आशा इन ऊंचे स्थानों को गिरा सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह परमेश्वर के साथ आधी दूर ही गया परंतु परमेश्वर उसे काम में लिया। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। मेरे प्रियो, मैं उन लोगों से अब उब गया हूँ जो अपने आप को अलग कहते हैं और उनसे भिन्न विधि पालन करने वालों को जो सेवकाय में हैं कटु आलोचना करते हैं। आज मुझे और आपको भी अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है कि आप कहाँ पर हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही उत्तम बातों को सीखा है। आइए हम अपने जीवन में उन उत्तम बातों को आने दें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां and he
जो